नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवादी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने पर बल दिया। आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने में दुनिया के दोहरे मानदंडों की आलोचना की। रूस 2030 तक बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। फलस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास की निंदा की, कहा शांति योजना पर अमेरिका के साथ सहयोग करने को तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को अमेरिकी स्वामित्व में रखने की अनुमति देने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और एशिया कप 2020 क्रिकेट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबला भारत के साथ। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ने वाले वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रस्तुति के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद विकास और शांति के लिए खतरा है।
विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकियों के बीच व्यापक नेटवर्किंग को देखते हुए भी जो इससे निपटने के लिए संघर्ष करते हैं वे समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व को आतंकी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करना चाहिए। विदेश मंत्री ने प्रतिबंध लागू करने में विश्व के दोहरे मानदंडों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स में बाधा होती है, लागत बढ़ती है और राष्ट्रों पर दबाव बनता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक रूप से नाजुक स्थिति में ऊर्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अधिक अनिश्चित बनाने से किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और उर्वरकों की कीमतें बढ़ने के कारण विशेष रूप से ग्लोबल साउथ बहुत प्रभावित हुआ है और शांति तथा विकास पर बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक विकास के बीच सहसंबंध पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांति को प्रोत्साहन देने और बनाए रखने में ऐसे देशों का उपयोग करना चाहिए जो संघर्षों में विरोधी पक्ष को प्रभावित करने में सक्षम हो। विदेश मंत्री ने जटिल वैश्विक खतरों का समाधान करने में भी ऐसे देशों को शामिल करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने टिकाऊ विकास की बुनियाद के रूप में शांति सुदृढ़ करने तथा सभी के लिए अधिक सुरक्षित और न्यायोचित भविष्य की कुंजी के रूप में बहुध्रुवीय विश्व को बनाए रखने के लिए
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी दुनिया भर में आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी, बहुध्रुवीय और दक्षिण-दक्षिण सहयोग मजबूत होगा। वे न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वार्षिक पैनल चर्चा को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक वैश्विक कार्यबल का उदय समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास की आलोचना की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाले शांति योजना पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने से रोके जाने के बाद वीडियो के माध्यम से श्री अब्बास ने संबंधित भूमि पर फलस्तीन का दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। इस बीच फलस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा देने वाले देशों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। श्री अब्बास ने इसराइल को फलस्तीन की भूमि पर कब्जा न करने की चेतावनी दी क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से द्विराष्ट्र समाधान खतरे में पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चाबहार बंदरगाह से 3 कंटेनरों में अफगानिस्तान के काबुल पहुंची राहत सामग्री कल वहां प्रशासन को सौंप दी जाएगी। अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप के मद्देनजर ये भारत की मानवीय सहायता का एक हिस्सा है। ये राहत सामग्री कल वहां प्रशासन को सौंपी गई। इसमें खाद्य पदार्थ, जलशोधन संयंत्र, प्रोटीन पाउडर, टीन शेड, बिस्तर, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, चिकित्सा सामग्री सहित अन्य राहत सामग्री भेजी गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं के आयात पर 100% कर सहित नए शुल्क लगाने की घोषणा की है। जो कंपनियां अमेरिका में ऐसी दवाएं बनाएंगी उन पर यह शुल्क नहीं लगेगा। हैवी ड्यूटी ट्रकों पर 25% और किचन तथा बाथरूम कैबिनेट पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। ये फैसला अमरीकी उद्योगों को विदेशी उत्पादों की बाढ़ से बचाने के लिए किया गया है। गद्देदार फर्नीचर पर अगले सप्ताह से 30% शुल्क लगेगा। अमरीकी कारोबारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐसे शुल्क का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अमरीका मैक्सिको और कनाडा जैसे निकट सहयोगियों पर निर्भर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि शुल्क बढ़ाने से लागत बढ़ जाएगी। इसके बावजूद ट्रंप का कहना है कि अमरीका में नौकरियों और उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कदम आवश्यक हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें टिकटॉक को अमरीका में जारी रखने की अनुमति मिल गई है। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को कम करने और इस लोकप्रिय ऐप पर अमरीकी स्वामित्व का रास्ता साफ करने के लिए किया गया है। टिकटॉक पर चीनी कंपनी की अल्प हिस्सेदारी बनी रहेगी और अमरीका के निवेशक एक नए संयुक्त उद्यम के अंतर्गत लगभग 80% हिस्सेदारी रखने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 17 करोड़ अमरीकी उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 1.5 करोड़ राष्ट्रपति ट्रंप के अनुयायी भी शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदना बंद करने का आग्रह किया है। श्री एर्दोगान 2019 के बाद पहली बार व्हाइट हाउस आए हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि रूस से तुर्की का निरंतर आयात मॉस्को पर वैश्विक दबाव को कम कर रहा है। उन्होंने एर्दोगान से व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके शांति की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। इस बीच ट्रंप ने अमरीकी स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के बारे में लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस वर्ष 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो एक पुनर्चक्रित ईंधन इस्तेमाल करने वाली प्रणाली होगी। ये घोषणा उन्होंने वर्ल्ड एटॉमिक वीक फोरम में मॉस्को में की। पुतिन ने कहा कि प्रणाली 95% तक खर्च हो चुके ईंधन का पुनः उपयोग करेगी, जिससे रेडियोधर्मी कचरे में भारी कमी आएगी और यूरेनियम की मांग कम होगी। उन्होंने इसे रूस की सबसे गौरवपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक बताया। ये प्रणाली टॉम्स्क क्षेत्र में बनाई जाएगी। श्री पुतिन ने ओलियानोवस्क में एक नए अनुसंधान केंद्र में परीक्षण प्रयासों में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया। उन्होंने तकनीकी उपनिवेशवाद के प्रति रूस की अस्वीकृति पर जोर देते हुए कहा कि मॉस्को उच्च सुरक्षा और अप्रसार मानकों को बनाए रखते हुए देशों को स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रम बनाने में मदद करता है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
एशिया कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में सुपर फोर के मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच दुबई में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल दुबई में सुपर फोर के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। अब रविवार को फाइनल में उसका सामना भारत से होगा। एशिया कप के 17 संस्करणों में पहली बार फाइनल में दोनों देश आमने सामने होंगे। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कल बेंगलुरु में आईसीसी महिला विश्व कप से पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड से 153 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 340 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम केवल 34 ओवर में 187 रन पर सिमट गई, जिसमें जेमिमा रॉड्रिक्स ने 68 गेंद पर 66 रन की पारी खेलकर शीर्ष स्कोरर रहीं। भारत आज अपने दूसरे और अंतिम अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड से खेलेगा। भारतीय टीम विश्व कप का अपना पहला मुकाबला मंगलवार को श्रीलंका के साथ गुवाहाटी में खेलेगी। उधर 17 वर्ष से कम आयु वर्ग में भारतीय फुटबॉल टीम ने श्रीलंका के कोलंबो में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में नेपाल को 3-0 से हरा दिया है। अब फाइनल में उसका सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले बांग्लादेश ने एक अन्य मुकाबले में पाकिस्तान को 2-0 से हराया था। भारत के लिए मैच में वांग खेरा कपम गुन लेइबा ने 61वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 80वें मिनट में स्थानापन्न अजलान शाह और डायमंड सिंह थोकचोम ने गोल करके भारतीय टीम का दबदबा कायम रखा।
भारतीय वायुसेना ने 6 दशक की सेवा के बाद आज चंडीगढ़ में MiG-21 विमान को विदाई दी। इस अवसर पर आयोजित समारोह 60 वर्ष से भी अधिक समय तक देश की सेवा करने वाले इस विमान के एक युग के अंत का प्रतीक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आतंकवादी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने पर बल दिया। आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने में दुनिया के दोहरे मानदंडों की आलोचना की। रूस वर्ष 2030 तक बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। फलस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास की निंदा की, कहा शांति योजना पर अमरीका के साथ सहयोग करने को तैयार। अमरीका के राष्ट्रपति ने टिकटॉक को अमरीकी स्वामित्व में रखने की अनुमति देने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।